स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 31 जनवरी और दिन रविवार। नवाज शरीफ ने कहा पठानकोट हमले की जांच जल्द होगी पूरी।
यकीनन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई है जिसका ताल्लुक अगर पाकिस्तान की सरजमीन से है तो उसके तह तक जाया जाए।
लेकिन क्या है इसके मायने, होगा एक विश्लेषण। तुर्की का आरोप, रूस ने एक बार फिर उसकी वायु सीमा का किया उल्लंघन।
रूसिया तुर्कीनिन एगेमेनलिक हक्लरिना योनेलिक बु इहलाललेरिने देवाम एतमेसि हालिंदे
सोनुचलार। अखबारों की समीक्षा, खेल समाचार और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले की जांच जल्दी पूरी की जाएगी और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाएगी। इस साल 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर चरमपंथी हमला हुआ था। कहा जा रहा है कि हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। भारत ने पाकिस्तान को इससे जुड़े सबूत भी दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इन हमलों की जांच के आदेश दिए थे और पठानकोट हमलों के बाद दोनों देशों के बीच शुरू हो रही बातचीत का दौर फिर से टल गया था। सीरिया के मुख्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित शांति वार्ता के लिए पहुंच चुका है। हाई निगोशिएशंस कमेटी नाम का ये दल शुक्रवार को वार्ता में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गया था। इस दल ने शर्त रखी है कि वो संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों से बात करेगा और राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं होगी। हाई निगोशिएशंस कमेटी के प्रवक्ता सालेम अल मेसलेट ने कहा कि जब मानवीय जरूरतों को पूरा कर दिया जाएगा तभी ये दल वार्ता में हिस्सा लेगा। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं सीरिया के लोग बहुत तकलीफें झेल चुके हैं। इस नरसंहार को रोकना होगा। हमारे लोग, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, रूसी विमानों के हमलों में मारे जा रहे हैं। हमें इसका अंत करना होगा, उसके बाद ही वार्ता हो सकती है। हमें देखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीरिया के लोगों की मदद करना चाहता है। ये थे सालेम अल मेसलेट के शब्द। कोलंबिया में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि एक हफ्ते में जीका वायरस से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। कोलंबिया में एक हफ्ते में करीब 2000 महिलाएं जीका वायरस से पीड़ित पाई गई हैं। जीका वायरस से पीड़ित गर्भवती महिलाएं ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जिनका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। कोलंबिया में ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। करीब 20,000 लोग जीका वायरस से पीड़ित हैं। महिलाओं से कहा गया है कि वो 6 से 8 महीने तक गर्भवती न हो। फ्रांस में चरमपंथ के दोषी पाए गए दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों से फ्रांस की नागरिकता छीनने और आपातकाल को लेकर नए प्रस्ताव का विरोध करने के लिए पेरिस में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नेताओं और ट्रेड यूनियन सदस्यों के साथ हजारों लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लोगों ने तुरंत आपातकाल हटाने की मांग की। नवंबर में पेरिस में हमलों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। बुधवार को फ्रांस की न्याय मंत्री क्रिस्टियन टोबीरा ने इस प्रस्ताव के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तुर्की तटरक्षक बल का कहना है कि शनिवार को तुर्की से ग्रीस जा रहे 39 प्रवासियों की ईजियन सागर में डूबने से मौत हो गई है। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। 60 लोगों को बचा लिया गया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जनवरी की 31 तारीख और दिन रविवार। कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने कहा है कि पठानकोट में भारतीय वायुसैनिक अड्डे पर चरमपंथियों के हमले की जांच जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी। इस साल 2 जनवरी को पठानकोट में चरमपंथी हमले की वजह से दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशों को धक्का लगा था। सुनिए एक रिपोर्ट संदीप सोनी की।
लाहौर में संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ ने इस बात पर दुख जताया कि पठानकोट हमले से बातचीत की प्रक्रिया बाधित हुई है।
आर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई है उसमें इंडियन वजीर खारजा भी यहाँ पे आई और फिर मोदी साहब भी लाहौर तशरीफ लाए, तो मामला तो बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से फिर ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से एक सेटबैक हुआ है।
भारत सरकार का कहना है कि 2 जनवरी को पठानकोट पर हुए चरमपंथी हमले के लिए पाकिस्तान में सक्रिय जैश ए मोहम्मद जिम्मेदार है और भारत अपने इस दावे के सबूत पाकिस्तान को दे चुका है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले की जांच कर रहा है और इस जांच के नतीजे जाहिर किए जाएंगे।
अब इस वाकये की तफ्तीश हो रही है, मेरे ख्याल है कि बहुत जल्द तफ्तीश के नतायज सामने आएंगे, कौम के सामने भी आएंगे और यकीनन हमारा फ़र्ज बनता है कि अगर कोई ऐसी हरकत हुई है जिसका ताल्लुक अगर पाकिस्तान की सरजमीन से है तो उसके तह तक जाया जाए, और यही हमने अपना दुनिया को भी कहा है कि हम इसकी तह तक पहुँचेंगे।
पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले में भारत के 7 सैनिक और कथित तौर पर सीमा पार से आए 6 चरमपंथी मारे गए थे। हमले से पहले दोनों पक्ष विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए तैयार हुए थे, लेकिन हमले की वजह से 15 जनवरी की प्रस्तावित वार्ता रद्द हो गई थी। भारत का कहना है कि बातचीत के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान उन सबूतों के हिसाब से कार्रवाई करे जो उसे सौंपे गए हैं। इसके बाद खबरें आई थी कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिया है। पठानकोट हमले के बाद अमरीका और फ्रांस जैसे देशों ने पाकिस्तान पर चरमपंथी गुटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया है।
ये थे संदीप सोनी, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस बयान को भारत गंभीरता से लेगा, क्योंकि भारत में कई एक लोग हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान ऐसी बातें तो पहले भी कहता रहा है, और क्या खुद पाकिस्तान सरकार में पठानकोट हमले की जांच को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में हमारे साथी संदीप सोनी ने बात की रक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से।
इतना आगे बढ़कर बयान जो दिया गया है वो शायद पहली बार ही दिया गया है, लेकिन पहले भी इस तरह के आश्वासन तो आए हैं, लेकिन जब एक्चुअल कार्रवाई का मामला आता है तो फिर कार्रवाई अगर हो भी जाए, इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश पूरी हो भी जाए, तो फिर सारा मामला कोर्ट में गिर जाता है। मुद्दा तो आज भी वही है जो पहले रहा है, तो उसमें शायद कोई बदलाव अभी नजर नहीं आ रहा। सुनने में तो ये आ रहा है कि जांच चल रही है, कि कार्रवाई भी हो रही है, उनके दफातर भी बंद किए गए हैं, उनके कुछ सीनियर अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, ये सब चीजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन साथ साथ और भी खबरें आ रही हैं कि अभी शायद एक मसूद अजहर का एक और बयान छपा है जिसमें उन्होंने काफी व्यंग कसा है पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, एक लिहाज से उनको चैलेंज किया है कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करके दिखाएं अगर उनमें इतनी हिम्मत है, तो उससे फिर ये महसूस होता है कि ना तो वो हिरासत में है और ना ही उसके ऊपर कोई उसकी लगाम कसी गई है, तो फिर वो जो शक और शुबाहत जिससे हम हरदम दो चार रहते हैं वो दोबारा से जहन में आते हैं कि भाई यार ये वही वाला खेल दोबारा से तो नहीं रिपीट हो रहा। जैसे ही पाकिस्तान की सरकार ये दुहाई दे कि कानून के तहत वो काम कर रही है तो उसका एक लिहाज से मतलब ये होता है कि कोई काम नहीं होगा।
लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि डिप्लोमेसी में नेताओं के बयान बहुत मायने रखते हैं, खासतौर पे जब बात भारत पाकिस्तान के रिश्तों की हो?
जब राजनेता बयान देते हैं पश्चिमी देशों में तो हर लफ्ज को तोल करके उसका बयान दिया जाता है, वो ऐसी ऑफ द कफ कोई रिमार्क नहीं देते, स्पेशली इस तरीके के मामलों में। हमारे यहाँ पर लोग बयान पहले दे देते हैं, सोचते बाद में कि क्या बयान दिया था या उसका क्या मतलब निकलेगा या उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या असर पड़ेगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब से एक सवाल पूछा गया जिसके तहत उन्होंने अपने तय बिना ये सोचे कि इसका मतलब क्या निकलेगा एक अनगार्डेड सा बयान दे दिया जिसमें कहा कि भाई सेटबैक हुआ है और हमारे को कुछ करना पड़ेगा, और एक लिहाज से ये उस चीज की नफी करता है जो आज से चंद दिन पहले उन्हीं के जो मुशीर खारजा हैं सरताज अजीज, उनका एक बयान था कि बॉल जो है भारत के पाले में है, तो नवाज शरीफ के बयान तो उस चीज की नफी करता है कि जब वो ये कहते हैं कि भाई हमको अब हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ इसमें दिखाएं, तो फिर वो उस बयान की नफी करके वो यही मान रहे हैं कि बॉल अभी भी उनके पाले में है, और क्या एक्चुअली अगर उनके पाले में है तो उनको कोई उस बॉल से खेलने देगा कि नहीं खेलने देगा, ये भी एक सवाल उठेगा। तो ये पेचीदगियां हैं इस सारे मामले की। तो जब तक एक्चुअली कोई ऐसा पैराडाइम शिफ्ट, बयानबाजी के हिसाब से तो बहुत कुछ चेंज हुआ है लेकिन पैराडाइम शिफ्ट ग्राउंड पे नहीं नजर आएगा एक्शन के लिहाज से, तब तक मेरे ख्याल ये मानना कि इस बार अब कुछ बदल गया है मेरे ख्याल ना समझी होगी।
सुशांत सरी से बात कर रहे थे संदीप सोनी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। तुर्की ने कहा है कि रूस ने एक बार फिर उसकी वायुसेना का उसकी वायु सीमा का उल्लंघन किया है। तुर्की ने रूस के राजदूत को अपने विदेश मंत्रालय में तलब भी किया है। हालांकि रूस इस तरह के किसी भी आरोप को खारिज करता है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
तुर्की ने रूस पर उसकी हवाई सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने चेतावनी दी है कि रूस को दोबारा वायु सीमा का उल्लंघन करने का खामियाजा भुगतना होगा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बताया था कि रूस के लड़ाकू विमान SU-34 ने शुक्रवार को तुर्की की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, जबकि उसे रूसी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चेतावनी दी गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने कहा, रूस के एक लड़ाकू विमान ने शुक्रवार दोपहर में हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया था। अंग्रेजी और रूसी में चेतावनी देने के बाद भी ये उल्लंघन किया गया। रूस संकट को बढ़ाना चाहता है। ये वायु सीमा जिसका उल्लंघन किया है वो नाटो की भी वायु सीमा है। नाटो घटनाक्रम को करीब से देख रहा है। हमसे पहले नाटो ने ही इसका संज्ञान लिया था। रेचप तैयब अर्दोगान के शब्द। तुर्की ने रूस के राजदूत को राजधानी अंकारा में तलब किया है। एर्दोगान ने चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा, अगर रूस इसी तरह तुर्की की स्वायत्तता का उल्लंघन करता रहेगा तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। रूस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नेटो और रूस के संबंधों और क्षेत्र के तनावपूर्ण हालात में कोई सुधार नहीं आएगा, इससे तो नुकसान ही होगा। ये थे रेचप तैयब अर्दोगान के शब्द। नवंबर में तुर्की ने रूस का एक लड़ाकू विमान मार गिराया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। तुर्की ने आरोप लगाया था कि रूसी विमान उसके हवाई क्षेत्र में घुस आया था, जबकि रूस ने कहा था कि रूसी विमान सीरिया की सीमा में था। रूस ने इस घटना के बाद तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे।
ये थी हरिता कांडपाल। और अब एक खबर दिल्ली के एक स्कूल से। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में 6 साल के बच्चे का शव मिला है। बच्चे के पिता इसके लिए स्कूल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं स्कूल प्रबंधन इसे दुर्घटना बता रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल जारी है। सुनिए एक रिपोर्ट संदीप सोनी से।
दक्षिणी दिल्ली में स्थित प्रतिष्ठित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के भीतर पानी की टंकी में 6 साल का एक बच्चा मृत पाया गया। दिल्ली सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि बच्चे की पहचान दिव्यांश के तौर पर हुई है, जो वसंत कुंज में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था। पुलिस ने बताया कि दिव्यांश जब नजर नहीं आया तो स्कूल के अधिकारियों ने उसकी तलाश शुरू की और वो पानी के टैंक में मिला। स्कूल वाले दिव्यांश को अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त प्रेमनाथ ने संवाददाताओं को बताया,
अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी लीगल एक्शन बनेगा दैट विल टेक। और ये पता लगा है कि एक वाटर स्टोरेज टैंक है जिसमें से इसकी बॉडी जो है वो रिट्रीव की गई।
वहीं बच्चे के पिता स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन सही बात नहीं बता रहा।
प्रिंसिपल कहती है आप चुप रहिए, मैं थोड़ी देर रुका लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने चिल्ला के पूछा तो उन्होंने चिल्ला के जवाब दिया कि आप चुप रहिए, इसी में आपका फायदा है। किसी ने एक लफ्ज ये नहीं बोला कि आपका बेटा गिरा है टैंक में या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने पुलिस को बताया जो बताया। पुलिस ने हमें बताया कि आपका बेटा टैंक में गिरा। जब हम पुलिस के साथ वहां जाके देखा तो टैंक था ही नहीं। टैंक तो बहुत अंदर था, बाहर कमरे के लॉक लगा हुआ था, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने आप जाके वहां इतने अंदर तक क्यों जाएगा और कैसे गिरेगा।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
इसमें तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए कि फैक्ट्स क्या रहे हैं उस बच्चे की डेथ के पीछे। तो मैंने इसीलिए अपने वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको कहा है कि मुझे तुरंत एक फैक्ट की शीट बना के दें और पूरी जांच करके दें कि मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल की क्या जिम्मेदारी थी। क्योंकि एक 6 साल का क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, अगर आप उसको एडमिशन अपने स्कूल में देते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि वो आपके पूरे स्कूल प्रमाइसिस में कहीं भी जाएगा
और
एक रिनोन्ड स्कूल है, तो लोग आपके सिस्टम पर, आपके मैनेजमेंट पर भरोसा करके अपने बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं और आप उसकी अगर इतनी केयर नहीं कर सकते कि आप उनके बच्चों को सुरक्षित रख सकें, फिर आपको स्कूल चलाने का कोई अधिकार नहीं है, आपको बंद कर देना चाहिए।
दिल्ली में एक हफ्ते में इस तरह का ये दूसरा मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके में नगर निगम के एक स्कूल में सेप्टिक टैंक में 5 साल का बच्चा गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।
ये थे संदीप सोनी और अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हम सबकी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर अपना 16वां मन की बात कार्यक्रम करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इससे पहले के मन की बात कार्यक्रमों के लिए करीब 61,000 लोगों ने भारत सरकार की वेबसाइट पर अपने विचार रखे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर शनिवार को तीखा बयान दिया था जिस पर आज कई प्रतिक्रियाएं आने की उम्मीद है। सिन्हा ने कहा था कि संवाद की कमी है और इस सरकार का हश्र आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जैसा हो सकता है। टैक्स के सरलीकरण पर बनाई गई जस्टिस आरवी ईश्वर कमेटी की आज रिपोर्ट आ सकती है। इस रिपोर्ट में व्यापार को सरल बनाने को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर सिफारिशें की जा सकती हैं। पिछले साल अक्टूबर में इस कमेटी का गठन किया गया था। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे और बड़े ब्रिज का शिलान्यास कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। भाजपा ने लालू प्रसाद यादव को सरकारी समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किए जाने पर आपत्ति जताई है। सड़क निर्माण विभाग ने लालू प्रसाद यादव को आमंत्रण भेजा है। ये विभाग उनके बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास है। जीका वायरस के संक्रमण से जूझ रहे ब्राजील में रियो में आज हजारों लोग परेड में हिस्सा लेंगे। रविवार को कार्निवल परेड में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। ब्राजील में इन दिनों मच्छरों से होने वाले जीका वायरस के संक्रमण के मामले काफी बढ़ गए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी T20 मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। 3 T20 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में हराकर भारत पहले ही सीरीज पर कब्जा कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल फाइनल मैच आज मेलबर्न में खेला जाएगा। पिछली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला ब्रिटेन के एंडी मरे के साथ होगा। एंडी मरे 5वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। अमेरिका के आयोवा में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए कॉकसिस यानी दलों की बैठक आज होने वाली है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आज आयोजन किया जा रहा है। नामांकित किए गए एडी रेडमेन, हेलेन मिरेन, इद्रिस एल्बा और केट ब्लैंचेट पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।
कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि सरकार AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने का समर्थन नहीं करती है, तो इसके बाद न सिर्फ AMU बल्कि दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के माइनॉरिटी कैरेक्टर पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई। लेकिन अब अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के मुसलमान भारत सरकार के उस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को ख़त्म करने की बात कही गई है। अमेरिका में स्थित AMU के कई पूर्व छात्रों की संस्थाएं अब इस सिलसिले में सरकार से विरोध जताने की भी तैयारी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स नामक भारतीय मूल के मुस्लिम अमरीकियों की संस्था के निदेशक कलीम ख्वाजा ने एक बयान जारी कर कहा, आज़ादी के बाद से भारत में मुसलमान शिक्षा में बहुत पिछड़े रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने मुसलमानों में उच्च शिक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है और ऐसे में भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में AMU की अपील का विरोध करना भेदभाव और मुस्लिम विरोधी कदम है। इस संस्था ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील भी की है कि वो कानून और मानव संसाधन मंत्रालयों द्वारा एएमयू और जामिया के खिलाफ उठाए गए इस कदम को रुकवाएं। संस्था ने अपने बयान में कहा है कि सरकार के इस कदम से भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान शिक्षा में और अधिक पिछड़ जाएंगे। इस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिए जाने संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एएमयू को 1981 में संसद ने कानून में संशोधन करके अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बहाल किया था, लेकिन 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और पिछली यूपीए सरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गई और अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने की अपील की, लेकिन मोदी सरकार के कानून और मानव संसाधन मंत्रालयों ने सरकार की उस अपील को जारी रखने से इनकार कर दिया। अमेरिका में रहने वाले पूर्व एएमयू छात्रों में इस बात पर बेहद नाराजगी है। कई पूर्व एएमयू छात्रों का कहना है कि मोदी सरकार संघ परिवार के असर में मुस्लिम विरोधी कदम उठा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा अनीस खान न्यूयॉर्क में रहती हैं। वो कहती हैं,
वैसे भी बेचारे मुसलमान पढ़ते कहाँ हैं, लेकिन अगर पढ़ते हैं और उनको न मिलेगा तो बहुत गलत होगा। बहुत जरूरी है हमारे लिए, माइनॉरिटी के लिए तो बहुत जरूरी है, रहना चाहिए। स्टेटस जब इसी बेसिस पे बना था ये, तो वो बेसिस किस वजह से खत्म कर रहे हैं, क्यों खत्म हो? आपकी हुकूमत आ गई तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो गवर्नमेंट के कमिटमेंट है वो खत्म हो जाए। आप क्यों गवर्नमेंट उसको क्यों खत्म करे जब इतने दिन चलता रहा? अगर उसी वक्त गलत था तो वो उस वक्त गलत था, लेकिन जब अब इतने दिन के बाद आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये कुछ बात बनते नहीं।
इसी तरह ह्यूस्टन शहर में रहने वाले परवेज जाफरी फेडरेशन ऑफ अलीगढ़ अलुमनाय नामक पूर्व एएमयू छात्रों की संस्था से जुड़े हैं।
हुकूमत आरएसएस का एजेंडा जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। जब 72 में ये मामला उठा था, 72 में मैं अलीगढ़ में था, और उस वक्त भी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले थे वो उसकी मुकाम पर करते, जब हम लोग उसकी माइनॉरिटी कैरेक्टर की डिमांड कर रहे थे। बाद में पार्लियामेंट ने बाकायदा एक्ट पास करके माइनॉरिटी कैरेक्टर दे दिया। अब इस वक्त ये सूरत सामने आ गई कि गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से उसको वापस लिया जा रहा है।
परवेज जाफरी ने सिलसिले में अपनी संस्था की बैठक भी बुलाई है, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एएमयू के हक में फैसले की उम्मीद है।
मैंने मीटिंग बुलाई है नेक्स्ट संडे को, इस पे हम लोग आपस में सलाह मशवरा करेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जाहिर है हम उसका एहतराम करते हुए कोई डेमोन्स्ट्रेशन और कोई वो तो वहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और उसने माइनॉरिटीज राइट्स को प्रोटेक्ट किया है पहले भी, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी करेंगे।
इस महीने की 11 तारीख को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एनडीए सरकार भारत जैसे सेकुलर देश में सरकार द्वारा किसी अल्पसंख्यक संस्थान को चलाने के हक में नहीं है। उन्होंने अदालत में यह भी कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का। हरीता तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हरीता, बताइए।
इकबाल जी, मैं सबसे पहले जिस खबर को आज बताना चाहती हूँ, संडे नव भारत टाइम्स, आज रविवार है तो कई सारी खबरें पहले पन्ने पर अलग अलग छपी हैं सब जगह। पहली खबर है, राहुल ने बापू से की रोहित की तुलना। रोहित वेमुला की ये खबर है जिसके आत्महत्या के विरोध में राहुल गांधी हैदराबाद में भूख हड़ताल पर कल बैठे थे। हिंदुस्तान ने छापा है, राहुल छात्रों के साथ एक दिन की भूख हड़ताल पर, जनसत्ता ने कहा वेमुला के लिए न्याय, समर्थन में राहुल का अनशन। और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, राहुल गांधी पहुंचे कैंपस में और सुषमा स्वराज ने कहा कि रोहित दलित नहीं था। सुषमा स्वराज का ये बयान आया था जिस पर कल काफ़ी चर्चा हुई पूरे दिन भर इस पर। और एक छोटी सी खबर अमर उजाला ने छापी है, जीएसटी का श्रेय कांग्रेस को, अब तो पास होने दो। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को ये कहा है कि इसका श्रेय हम कांग्रेस को देते हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सत्र में विधानसभा, ये संसद सत्र में जो अगले महीने शुरू हो रहा है, उसमें ये बिल इस पास होने दिया जाएगा और उसमें कुछ मदद करेगी कांग्रेस, ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई है। इसमें लिखा है कि उन्होंने कहा कि ये पारित होने में मदद करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके अलावा जो खबर एक मैं देख रही हूँ दैनिक भास्कर के मुख्य खबर है ये कि हृदय रोग की दवाएं 90% तक सस्ती और संक्रामक रोगों की दवा महंगी ही रही, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाओं के दाम एक साल में कम हो गए हैं। ये खबर छापी है दैनिक भास्कर ने अपनी मुख्य खबर के तौर पर। और हिंदुस्तान ने एक और खबर को उठाया है, दिल्ली में कूड़े पर टकराव और बढ़ा, सिसोदिया बोले वेतन घोटाला हुआ है और कर्मियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। वहीं जनसत्ता ने इससे जुड़ी खबर छापी है, इस खबर को आगे बढ़ाया है कि MCD के डॉक्टर और नर्सें भी हड़ताल पर चली गई हैं। खबर में ये छापा गया है कि नगर निगमों के संचालित अस्पतालों के 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर और 10,000 से ज़्यादा नर्सें भी वेतन और बकाए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो एक खबर ये भी मैं देख रही हूँ। और एक हिंदुस्तान ने खबर छापी है, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ गया है तो इससे कोई फ़ायदा जो हुआ था सस्ता होने का पेट्रोल डीजल, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल पर 1 रुपया और डीजल पर 1.5 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया है। तो ये खबरें आज अखबारों में छाई हैं।
जी बहुत शुक्रिया हरिता आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त हो चला है खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग में कल नई चैंपियन बनी। दरअसल 7वीं वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेल कर्बर ने फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स को कड़े संघर्ष के बाद 6-4, 3-6, 6-4 से हरा दिया और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया।
To win it, I mean my dream come true tonight on this night and...
ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में ये सेरेना विलियम्स की 5वीं हार रही। 26 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने वाली सेरेना अभी तक 21 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुकी है। आज ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल, शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे के बीच खेला जाएगा। उधर बांग्लादेश में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत ने न्यूजीलैंड को बेहद आसानी से 120 रन से मात दी। इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 258 रन बनाए। भारत के सलामी बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 57, सरफराज खान ने 74, अरमान जाफर ने 46 और महिपाल लोमरोर ने 45 रन बनाए। न्यूजीलैंड के जैक गिब्सन ने 50 रन देकर 3 और नाथन स्मिथ ने 39 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आवेश खान और महिपाल की गेंदों के सामने टिक ही नहीं सकी और 31.3 ओवर में ही 138 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड के क्रिश्चियन लियोपार्डी 40 रन बनाकर कुछ संघर्ष कर सके। महिपाल ने 47 रन देकर 5 और आवेश खान ने 32 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। अंडर 19 विश्व कप में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। वहीं लखनऊ में खेले जा रहे सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल शीर्ष वरीयता हासिल भारत के के श्रीकांत ने सेमीफाइनल में 11वीं वरीयता हासिल थाईलैंड के बूनसाक होनसाना को 32 मिनट में ही 21-14, 21-7 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। फाइनल में उनका सामना आज चीन के हुआंग युजियांग से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में अपने ही हमवतन शी युकी को 17-21, 22-20, 21-12 से हराया। लेकिन महिला युगल वर्ग में भारत की ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी हारकर बाहर हो गई। सेमीफाइनल में उन्हें कोरिया की जुंग युंग और शीन शियुंग चान की जोड़ी ने 21-14, 21-16 से मात दी। वैसे पुरुष युगल वर्ग में भारत के प्रणव जैरी चोपड़ा और अक्षय दिवालकर की जोड़ी फाइनल में पहुँच गयी है।
और अब प्रमुख समाचार।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले की जांच जल्द पूरी कर दी जाएगी, इसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की जाएगी। 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर चरमपंथी हमला हुआ था। सीरिया के मुख्य विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित शांति वार्ता के लिए पहुंच चुका है। हाई नेगोशिएशंस कमेटी नाम का ये दल शुक्रवार को वार्ता में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गया था। कोलंबिया में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि एक हफ्ते में जीका वायरस से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। कोलंबिया में एक हफ्ते में करीब 2000 महिलाएं जीका वायरस से पीड़ित पाई गई हैं। फ्रांस में चरमपंथ के दोषी पाए गए दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों से फ्रांस की नागरिकता छीनने और आपातकाल को लेकर नए प्रस्ताव का विरोध करने के लिए पेरिस में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। तुर्की तटरक्षक दल का कहना है कि शनिवार को तुर्की से ग्रीस जा रहे 39 प्रवासियों की इजियन सागर में डूबने से मौत हो गई है। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। तुर्की के रिजॉर्ट आई वाचिक के पास समुद्र तट से 60 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली हेमंत कुशवाहा ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए अपने तमाम साथियों के साथ इजाज़त। नमस्कार।